यही हम दो नंबर का दोहा मंगलाचरण के रूप में कहेंगे एक नंबर के पेज पर। ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः तेन भुवनते तीर्थंकरों की वाणी में जो तीन लोक का स्वरूप आया है उसके अनुसार आचार्यों ने जो ग्रंथ रचना की है उसमें से त्रिलोक सार के आधार से हम यहाँ तीन भुवन यानी तीन लोक पूरे लोक संबंधी यहाँ कुछ विशेष जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। यहाँ केवल भौगोलिक रचना नहीं देखनी है तो ये पूरा लोक लोक का अर्थ है यहाँ छह द्रव्यों का समूह। आकाश तो पूरा ही द्रव्य है और उसके बीचों बीच जितने एरिया में उसके सेंटर में पूरा एक धर्म द्रव्य एक अधर्म द्रव्य उतने ही क्षेत्र में अनंत जीव अनंतानंत पुद्गल रहते हैं। आकाश तो है ही है और वहाँ पर ही कालाणु पाए जाते हैं उतने जो क्षेत्र को हम लोक कहेंगे। तो ये छहों द्रव्यों का यहाँ वर्णन चलेगा। भौगोलिक तो बातें बताई ही जाएंगी यहाँ जीव कौन कौन से पर्याय में रहते हैं कैसे रहते हैं उनकी संख्या क्या है कौन मरकर कहाँ जा सकते हैं और भी बहुत सारी विविधता इसमें आती है उसको हम देखेंगे। यहाँ बार बार कुछ यूनिट जो बताने वाले जैसे हम कभी योजन कहते हैं कोष कहते हैं वो क्या है उसको देखेंगे। कभी कभी हाथ का या धनुष का भी उल्लेख आता है तो ये क्या है उसको देखकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 23 है। एक शब्द आता है अंगुल। अंगुल का अर्थ है ये जो तर्जन है ना इंडेक्स फिंगर उसकी जो चौड़ाई है उसको अंगुल कहेंगे। तो ये अंगुल पेज नंबर 23
तर्जनी क्या होती है।
हाँ इंडेक्स फिंगर बताए ना तर्जनी समझते हो ना ये बताया नहीं है। इसकी जो चौड़ाई है उसको हम अंगुल कहेंगे। तो इसमें भी तीन प्रकार के अंगुल आते हैं। एक तो आत्मांगुल। आत्मांगुल इसका अर्थ क्या है छोटे बच्चे का अंगुल कितना होगा उसके अपने साइज का होगा। बड़ा आदमी है हट्टा कट्टा तो उसका अंगुल वो बड़ा होगा। अभी हम अभी पांचवे आरा में यानी पंचम काल में रहते हैं तो हमारी हाइट बॉडी के अनुसार हमारे अंगुल है वो हमारा आत्मांगुल कहलाएगा। तो चौथे काल में जब वो भरत चक्रवर्ती थे वो तो हमसे 500 गुना बड़े थे तो उनका अंगुल भी 500 गुना बड़ा था। अब उत्तम भूभूमि में चले जाएंगे तो एक एक जीव की हाइट ही तीन कोस की थी तो उसका अंगुल कितना बड़ा होगा तो उसको कहेंगे आत्मांगुल। ख्याल नहीं ना हरेक जीव के अपने शरीर के प्रोपोर्शन में उसका अंगुल की चौड़ाई अलग अलग होगी उसको कहेंगे आत्मांगुल। एक होता है प्रमाणांगुल। अवसर्पणी का प्रथम चक्रवर्ती जैसे हमारे यहाँ अभी वर्तमान में अवसर्पिणी काल चल रहा है ये अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी समझते हैं क्या है नहीं समझते कोई बात नहीं। काल चक्र जहाँ चलता है तो भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में कि भरत क्या है ऐरावत क्या है विदेह क्या है ये हम सब देखने जा रहे हैं। कुछ बातें पहले थोड़ी सुनेंगे और उसकी क्लैरिटी तो बाद में आने वाली है। तो ये भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्रों में कालों का परिवर्तन होता रहता है और जो हम विदेह क्षेत्र कहते हैं वहाँ एक समान एक सदृश काल हमेशा ही चलता रहता है। तो हमारे पहला आरा यानी प्रथम काल फिर दूसरा आरा दूसरा काल तीसरा काल चौथा काल पांचवा अभी जो चल रहा है फिर छठा काल उसके बाद ये उल्टा चक्र चलेगा छठा पांचवा चौथा तीसरा दूसरा पहला। तो पहला काल यहाँ प्रथम जो है उत्तम भोग भूमि का यहीं पर था फिर उसके बाद यहीं पर दूसरा काल यानी मध्यम भोगभूमि शुरू हुई, फिर तीसरा काल जघन्य भोगभूमि हुई, फिर चौथा काल कर्म भूमि की शुरुआत यहाँ हो गई। पहले तीन काल में तो भोगभूमि थी और बस जीव मर कर यहाँ से स्वर्ग में ही जाते थे। चौथे काल में मोक्ष का दरवाजा खुला, हम कह रहे ना नरक में भी जाने लगे स्वर्ग में, यानी यहाँ मरकर चारों गति में जाएंगे। हमने देखा है कि यहाँ हमारे प्रथम तीर्थंकर हुए आदिनाथ भगवान, पहले तो उस यहाँ भोगभूमि थी, फिर यहाँ 24 तीर्थंकर हुए ये चौथे काल में। तो केवल तीर्थंकर ही नहीं, अन्य भी बहुत से जीव यहाँ से मुनि अवस्था धारण करके मोक्ष चले जाते हैं। और फिर अभी हमारा कौन सा चल रहा है काल, पंचम काल। पंचम काल में मोक्ष नहीं है, फिर भी मुनि अवस्था जितना पुरुषार्थ तो इस काल में भी होता है, फिर यहाँ छठा काल आएगा, फिर उल्टी बात चलेगी, ये भरत भूमि की बात चल रही। तो ये कालों का चक्र, कालों का परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ जो अवसर्पिणी का यानी हमारी जो अभी अवसर्पिणी चल रही है, और जो उल्टा ऊपर चढ़ता काल है उसको कहेंगे उत्सर्पिणी। इसकी और डिटेल बातें बाद में देखेंगे हम, जब उसका विषय आएगा उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, जीवों की क्या बातें हैं, मरकर कहाँ जाते हैं, उसकी चर्चा तो अभी अपना विषय नहीं है। अवसर्पिणी का जो प्रथम चक्रवर्ती यानी हमें जो मालूम है वो भरत चक्रवर्ती जो हुए थे आदिनाथ के पुत्र, तो उस चक्रवर्ती के अंगुल का जो प्रमाण है उसको कहेंगे प्रमाण अंगुल। स्टैंडर्ड है वो तो, अभी आत्मांगुल तो वेरिएबल है, तो उसमें तो हम कोई विशिष्ट बात बता नहीं सकते, तो ये प्रमाण अंगुल। और एक अंगुल होता है उसका नाम है उच्छेद अंगुल, उच्छेद अंगुल। ये बात यहाँ लिखी है 23 पेज पर छठी लाइन में लिखी है, उच्छेद अंगुल कहते हैं। ये उच्छेद अंगुल का अर्थ क्या है उसको जरा पहले लाइन से पढ़ लेते, देखो 23 पेज पर पहली लाइन से हम पढ़ेंगे। आपका प्रश्न ये धनुष हाथ अंगुल आदि क्या है, तो पहले इसको देखेंगे। अनंतानंत परमाणुओं का स्कंद, स्कंद यानी अनंत परमाणु जुड़ जाते हैं उसको स्कंद कहते हैं, उसका एक नाम है अवसन्नासन्न। अभी इसके आगे जो जो नाम देंगे तो इससे 8 गुने बड़े होंगे, यानी 8 अवसन्नासन्न का एक सन्नासन्न कहलाएगा। 8 सन्नासन्न का एक जो होगा उसको त्रुत रेणु कहेंगे, फिर आगे त्रस रेणु, रथ रेणु, उसके आगे उत्तम भोग भूमि वालों के बाल का अग्रभाग, बाल है हेयर है उसका अग्रभाग है ना, उसका जो पॉइंट एंड, क्योंकि वो छोटा था टेपरिंग होता है तो वो कितना छोटा है तो वो उससे 8 गुना बड़ा है। उससे मध्यम भोग भूमि वालों के बाल का अग्रभाग उससे भी 8 गुना मोटा होगा, उससे जघन्य भोग भूमि वालों के बाल का अग्रभाग 8 गुना मोटा होगा, उससे कर्म भूमि वालों के बाल का अग्रभाग और 8 गुना बड़ा होगा, उससे लीक, उससे सरसों, फिर यव, ये 8-8 गुने बड़े हैं, और 8 यव का एक अंगुल, यव यानी जो अनाज है गेहूं जैसा उसको यव कहते हैं, उसकी जो चौड़ाई है उससे ये अंगुल की चौड़ाई 8 गुना मोटी है, इसको क्या कहेंगे उच्छेद अंगुल। अब ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हमने उच्छेद अंगुल, इसको ऑर्डिनरी हम अंगुल कहेंगे तो भी ठीक है। अब इस अंगुल से आगे के माप बताएंगे हम, सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। 6 अंगुल का एक पाद, इसकी भी ज्यादा कुछ चर्चा नहीं है। 2 पाद की एक विलस्ती, विलस्ती समझते हैं, हाँ। 2 विलस्ती का एक हाथ, हाथ यानी यहाँ से यहाँ तक, 2 हाथ की एक बीक, जिसे हम ऐसा कहते हैं ये बीक, और 2 बीक का एक धनुष। अब ये ऊपर सब ये पाद विलस्ती भूल जाओ, 4 हाथ का एक धनुष है, इतना याद रखना। क्या कहा, हमारे समय क्योंकि कभी कभी हाथों में बात आती है और कभी कभी धनुषों में बात कहेंगे। जैसे महावीर भगवान की हाइट कितनी थी, 7 हाथ, 7 हाथ है ना, तो 4 हाथ का एक धनुष, तो एक धनुष और तीन हाथ, और आदिनाथ भगवान की कितनी थी?
500
धनुष। वो धनुष में बताया और ये हाथ में बताया। यानी हमारे लिए कौन कौन से यूनिट्स हम ज्यादा यूज करेंगे? हाथ का और धनुष का। तो चार हाथ का एक धनुष हुआ, यानी अबाउट 6 फीट। एक हाथ 1.5 फीट का तो हो जाएगा ना ऐसा। 2000 धनुष का एक कोष, कोष टिश्यू हम जो कोष कहते हैं, 2 माइल का एक कोष होता है, नहीं मालूम? और 4 कोष का एक योजन है। ये कैसे सारे? ऑर्डिनरी कोष, ऑर्डिनरी योजन है, ऑर्डिनरी धनुष है। जहाँ द्वीप समुद्र आदि की बात होगी, या हम कहेंगे असंख्यात योजनों का राज्य होता है, तब वो कौन सा योजन है? वो महायोजन। वो क्या है? यहाँ ये सब हमने ऑर्डिनरी अंगुल से शुरू किया था, उच्छेद अंगुल से। और जो प्रमाणांगुल है वो 500 गुना बड़ा होता है, इसलिए उस अंगुल से अगर यही सभी मापे हम कर देखेंगे तो ये सब अपने अपने 500-500 गुना होंगे। तो यहाँ जो हमने 4 कोष का एक योजन कहा, वहाँ उसको 2500 से गुना करेंगे तो 2000 कोष का एक योजन हो जाएगा, जिसको हम महायोजन कहेंगे। अब तो इतनी बात अपने लिए काफी है। जब कहीं इसका वर्णन आएगा तो मैं फिर आपको याद दिलाऊंगी कि यहाँ पर इसके यूनिट्स लिखे हुए हैं। बस इतनी बात हम देखेंगे अभी। अब हम आगे बढ़ेंगे। अपना विषय तो अभी चलेगा। हमने देखे थे कि लोकाकाश में कितनी पृथ्वियां देखी हमने? 8। और पृथ्वी कहना किसको? जो लोकाकाश के एक एंड से दूसरे एंड तक फैले, बस। बाकी उसके बाजू में क्या है? बस वात वलय है साक्षी। उसके नीचे भी वात वलय होते हैं, उसकी मोटाई कितनी वो हमने सब देख लिया था। अब हम ये ऊर्ध्व लोग, मध्य लोग आदि की बात हम देखेंगे। ये हम तीसरा जो चैप्टर है इसमें 26 पेज पर वहां से शुरू करेंगे। क्या प्रश्न पूछा?
कुछ पढ़ने का नहीं क्या?
नहीं, हम कुछ, क्योंकि आपको बड़े बड़े पॉइंट बताएंगे ना, या दो लोग की बात हम शुरू करेंगे हम, क्योंकि उसमें से बहुत सारी बातें मैंने आपको बता चुकी। मैं क्योंकि सिद्धशिला के ऊपर कितने वात वलय, नीचे कितने, वो हमने देखे थे सब, है ना?
तीसरा प्रकरण
है। हाँ, तीसरा। देखो, जैसे आप लोगों में से किसी ने कहा ना, वैसे वहाँ पे बताया था। एक पैराग्राफ देख के फिर हम आगे बढ़ेंगे। त्रिलोक सार के आधार से 3 भुवन की रचना हम यहाँ देखे। देखो ये 2 लाइन छोड़ दो, तीसरी लाइन में किसी ने कहा कि बहुत कठिन लग रहा है ना? कल कौन बहन आई थी, उसने कहा कठिन लग रहा है। आप तो हमें सीधे सिद्धशिला तक पहुँचा दो। परंतु अपना नरक पहुंचना आसान है, इसलिए पहले नरक में जाएंगे, जहां बहुत बार घूम चुके हैं, वहां की चर्चा समझना आसान है। लेकिन हम भारी भारी से पूरे अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक सभी चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखेंगे अभी क्या है। ये तो हमने भी यहाँ रिविजन तो की थी कि आकाश द्रव्य अनंत 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 प्रदेशी, एक द्रव्य सिंगल बड़ा। अभी उसके तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो थर्ड पैराग्राफ देखना कि अनंत प्रदेशी आकाश के मध्य में आकाश द्रव्य के अनंतवे भाग प्रमाण क्षेत्र में अन्य 500 द्रव्य पाए जाते, जो मैंने अभी अभी आपको बताए थे, है ना? तो उसको हम क्या कहेंगे? लोक कहेंगे। ये भी बात हमने देखी थी। उसके नीचे का पैराग्राफ, लोकाकाश में कितने द्रव्य है भाई, मनोज भाई? लोकाकाश में द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य, क्योंकि लोकाकाश इटसेल्फ आकाश द्रव्य का पार्क है और बाकी 5 द्रव्य तो वहाँ पाए ही जाते हैं। तो लोकाकाश में दिखने वाले द्रव्य कौन सा द्रव्य है? दिखने वाला द्रव्य 5 द्रव्य में से दिखने वाला द्रव्य कौन सा है? पुद्गल द्रव्य। रूपी है ना वो, जो दिखाई देता है। ये जरूरी नहीं कि परमाणु दिखाई दे, परंतु वो रूपी द्रव्य। परंतु सर्वज्ञ भगवान ने कितने द्रव्य देखे हैं, जाने हैं? 6 द्रव्यों को जाना है उन्होंने। तो लोक की रचना कैसी है ये हम सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अनुसार जान रहे हैं, क्योंकि पुद्गल द्रव्य भले हम देख सकते हैं, पर बड़े बड़े स्कंदों को देख सकते हैं, जो सूक्ष्म स्कंद है या सूक्ष्म परमाणु है उनको तो हम देख नहीं सकते हैं। कितनी रचना ऐसी है कि जो सामने है फिर भी हमें दिखाई नहीं दे। देखो हम एक बार वो सातारा के पास एक गांव है, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी ऐसी पवन चक्कियां है और वहाँ इतना फॉग आता है कि 200-200 फीट ऊंची है और उसके जो वो घूमती है ना पवन चक्की, तो उसके एक एक फैन होते हैं, उसके 3-3 फैन वाली एक एक, और उसका एक एक फैन ही 45-45 मीटर वाले है। इतना बड़ा वो स्ट्रक्चर और सामने जैसे ये पेड़ खड़ा है वैसे इतने डिस्टेंस पर है, परंतु ऐसा फॉग आ जाता है कि सामने कुछ नहीं ऐसा लगता है, तो वहाँ होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते। ऐसे ये जो या ऐसी भी रचना हो सकती कि जो साक्षात दिख रहे परंतु वहाँ कुछ नहीं है, ऐसा कभी देखा आपने? वहाँ दिख रहा है, हमने फोटो भी खींची पर उसमें जाके देखा वहाँ तो कुछ नहीं है। हाँ हाँ मृगजल इंद्रधनुष देखा कभी? रेनबो देखा, फोटो भी निकाल। हाँ तो वहाँ जाके देखा क्या था? अरे वो तो यानी वो विशिष्ट एंगल पर वो तो किरणें पड़ती है तो वो दिखाई देता है। तो ये जो हमें साक्षात हम देख रहे हैं ना फिर भी वहाँ कुछ नहीं है, या कभी कभी साक्षात है फिर भी नहीं दिखाई देता, तो हमें जो हमारे ज्ञान के अनुसार नहीं जाना है। सर्वज्ञ भगवान ने जो साक्षात प्रत्यक्ष जानकर बताया है उसके अनुसार हम यहाँ त्रिलोक की रचना देखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो उसकी हमने पूरी रिवीजन नहीं करेंगे, लोकाकाश के डायमेंशन हमने देखे थे, 14 राजू उसकी हाइट है, दक्षिणोत्तर सर्वत्र 7 राजू है, पूर्व पश्चिम 3 अधिक है, फिर भी सबका एवरेज निकाल कर हमने जो उसके घनफल निकाला था 343 घने राजू। अभी हम यहाँ आते हैं 30 नंबर के पेज पर, यानी ये जो नरक कहाँ है उसकी अधोलोक की बात करेंगे हम। अधोलोक में जो कितनी पृथ्वियाँ हैं तो 700 पृथ्वियाँ हैं, क्योंकि 8वीं पृथ्वी पर तो टॉप मोस्ट ऊपर है। अधोलोक का अर्थ क्या है? मध्य लोक से नीचे जो है पूरा लोकाकाश का जो एरिया है उसको अधोलोक कहेंगे। उसमें मुख्यता क्या है? तो एक एक राजू अंतराल से 7 पृथ्वियाँ है, ये तो बात हमने कल भी देखी। पहली पृथ्वी की मोटाई कितनी देखी? तो 1,80,000 योजन की। ये पहली पृथ्वी में 3 मुख्य लेयर्स है, 3 भाग है उसके। तो ये जो 3 भाग है उसके हम नाम देखते हैं। देखो पेज नंबर 29 लास्ट लाइन, पहली पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा पृथ्वी है। कल हमने ये पृथ्वियों के नाम भी देखे थे। एक नंबर के चार्ट में इन सभी पृथ्वियों के नाम, उनकी मोटाई चौड़ाई, नरकों के पटलों की एवं बिलों की संख्या और इन पृथ्वियों के अन्य नाम लिखे हैं जो हमने कल आपको पढ़ के बताए थे। आपने भी पढ़े थे हमारे साथ। तो रत्न प्रभा का दूसरा नाम क्या देखा था, याद है किसी?
धर्मा।
तभी उसको प्राकृत में धम्मा भी कहते हैं, आपने सुना होगा, धम्मा नरक ऐसा भी कहते हैं, धम्मा पृथ्वी। तो इस पहली पृथ्वी की मोटाई 1,80,000 योजन है, इसके 3 भाग है। इसका पहला अर्थात ऊपर का भाग खर भाग है, उसको कहेंगे खर भाग। ये 3 भाग है ना, 3 लेयर्स, तो सबसे ऊपर का है वो खर भाग है। दूसरा जो है वो पंख भाग है। खर भाग कितने योजन वाला है? तो 16,000 योजन मोटाई वाला है। जो पंख भाग है वो 84,000 योजन का है। और तीसरा उसका नाम है अब बहुल भाग, वो 80,000 योजन का है। अब जो सबसे ऊपर का 16,000 मोटाई वाला जो योजन वाला जो भाग है उसके 16 और भाग है, यानी ये जो 16 ने हजार हजार योजन वाले वहाँ एक दूसरे से बीच में अंतराल नहीं है, मतलब एक दूसरे से चिपके हुए वो अलग अलग, उसको भी अलग अलग नाम दिए है। देखो पहले खर भाग में 16 पृथ्वियाँ है, क्योंकि जो आड़ी फैली है ना उसको पृथ्वी कहते हैं, तो पूरा 1,000 योजन वाला जो पट्टा है उसको एक एक पृथ्वी कहेंगे हम। एक के नीचे पहला भाग है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 16 भाग है। 16,000 योजन में हजार हजार योजन के 16 भाग है। हम जो पृथ्वी के ऊपर है ना, ये तो ऊपर तो सब मिट्टी कीचड़ सब है, परंतु ये जो सारे 16 जो पृथ्वियां कही है, जो 16 जो भाग है, वो सारे अलग अलग टाइप के रत्नमयी है। रत्नों के कुछ नाम सुने होंगे ना? हाँ हाँ,
मोती माना
है। अरे मोती थोड़ा ही रत्न है, मोती तो मोती है, वो माना है, हीरा है, पांचों है, वो क्या है, पत्थर है ना। हाँ, आप उसको प्रेशियस स्टोन कहो, कुछ बात नहीं, बस स्टोन यानी क्या, पत्थर, पत्थर की महिमा है अपनी। आती है क्या कभी? क्यों? ये हीरा माने की तो बहुत महिमा आती है। अब यहाँ देखो क्या है, एक एक पृथ्वी हजार हजार योजन मोटी है, जो लोक के अंत तक फैली हुई है। यानी जो हमने पहली पृथ्वी के ये पार्ट देख रहे हो, उसमें कोई अंतराल नहीं, बीच में एक हुई, फिर दूसरा हजार योजन में दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी, ये 16 पृथ्वियां कहेंगे, इसको भी पृथ्वियां कहेंगे, परंतु वो पृथ्वी का ही, पहले पृथ्वी का ही पार्ट एंड पार्सल है। तो ये जो 16 है, उसके नाम भी यहाँ लिखे, देखो यहाँ 16 नाम लिखे ना, चित्रा, वज्रा, वैदुर्या, लोहिता, कामसार कल्पा, गोमेदा, प्रवाला, ये सारे रत्नों के नाम है। वो पूरी हजार योजन की पृथ्वी उस रत्नमयी है, रत्नमयी है, रत्नों से, उस रत्नों से ही बनी हुई, जैसे संगमरमर के पत्थर होते हैं, स्फटिक के पत्थर होते हैं, वैसे ही ये इन रत्नों के पत्थरों से वही वो पृथ्वी का स्वरूप है। ज्योति रसा अंजना अंजन मूलिका अंका स्फटिका चंदना सर्वर्तका बकुला और शैला। अब आगे बढ़ते हैं, खर भाग और पंख भाग, पहला कौन सा भाग देखा हमने, खर भाग। ये खर भाग और पंख भाग में भवन पाए जाते हैं। ये भवनों का क्या स्वरूप है, वो जब हम देवलोकों का वर्णन देखेंगे ना, भवनवासियों का, उसमें और विस्तार से चर्चा होगी। देखो ये जो पृथ्वी है, वो तो पृथ्वी तो सॉलिड है और उसके अंदर हॉलोज होंगे बीच में, जिसको फिर कैविटीज होगी, और उसको हम कहेंगे भवन। उनमें देव लोग कैसे, भवनवासी लोग कैसे विराजमान होते, उनके क्या क्या कैसे भवन होते, उसकी चर्चा आएगी आगे। ये तो भवन है, नीचे जाके और जो अब बहुल भाग है, उसमें तो उसमें भी कैविटीज है, वहां नारकी रहते हैं, उसको कहेंगे बिल। ये भवनों में भी वो भी कैविटीज है और नारकियों के भी कैविटीज है, तो उनको कहेंगे बिल और इसको कहेंगे भवन। पार्शलिटी हुई ना। एक चूहा रहता है, उसको क्या कहते हैं, चूहे के बिल। हाँ बिल, घर नहीं कहते उसको, बिल कहते हैं।
चूहा जहाँ रहता है,
हाँ जमीन के
अंदर,
दर कहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मराठी में बिल कहते, बिल बिल। क्यों? हाँ हिंदी में भी बिल कहते हैं, चूहों के बिल। तो ये नारकों के बिल कहेंगे और देवों के तो महल कहेंगे, देवों के तो भवन कहेंगे, क्योंकि नारकियों के बिलों में वहाँ तो वो पाप करके गए हैं और पाप भोगने की सामग्री बहुत सारी कुछ अलग अलग होती है। वहाँ की भूमि कैसी होती है, कैसे जन्मते हैं, कैसे कटते हैं, कैसे नीचे गिरते हैं, वहाँ क्या क्या है, वो देखेंगे अभी, हम सब देखने जाने जा रहे हैं। तो इसलिए उसको कहेंगे बिल, वहाँ होके आए हैं, परंतु क्या है, अभी पास भोग की मेमोरी तो रही नहीं ना, इसीलिए यहाँ चाहे जैसे स्वच्छंद रूप प्राप्त रूप प्रवर्तते हैं और वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। देखो ये खर भाग और पंख भाग में भवन पाए जाते हैं, वहाँ भवनवासी और व्यंतर रहते हैं। असुर कुमार को छोड़कर शेष 9 प्रकार के भवनवासी देव, इसका अर्थ है भवनवासी देव भी 10 प्रकार के। अभी उसकी चिंता नहीं करना, वो तो आएगी आगे चलकर बात है। उसमें से असुर कुमार नाम के जो देव है, तो वो पंख भाग में रहते हैं। व्यंतर भी 8 प्रकार के होते, उसमें से राक्षस नाम के जो व्यंतर है, ये हम जैसे राक्षस वगैरह सोचते वैसे नहीं होते, ये व्यंतर भी वैसे वो देव जाति के ही, यानी देव गति के ही जीव है, वो भी सुंदर होते हैं, उनके महल भी रत्नों आदि के होते, उनकी भित्तियां वगैरह जो आप वर्णन सुनेंगे तो आपको व्यंतर होने का एकदम सपना पड़ेगा है। तो कहते हैं वो उन जातियों के नाम है, तो वो वहाँ रहते हैं। अभी उनके जो रहने के जो भवन है, व्यंतरों के जो कुछ है, उसकी चर्चा जब देवगति के जीवन की बात करेंगे तब उसकी चर्चा आएगी। अभी तो हम यहाँ अधोलोक के वर्णन में मुख्यतः नरकों की बात देखेंगे। तो ये भवन कहाँ है? तो कहते हम जब अभी मनुष्य की बात हमने देखी है, नहीं देखी है। मध्य लोक में एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, दो गुना दो गुना दो गुना ऐसे होते हैं। बीच वाला एक बीच में जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, फिर उसके बाद में कौन सा है, धरती खंड है, फिर कालोदक समुद्र है, और फिर पुष्कर द्वीप है, उसका आधा लेना। यहाँ तक कहेंगे ढाई द्वीप, उसी को कहेंगे मनुष्य लोक। तो उसके नीचे कोई भवन नहीं है, परंतु बाकी जो असंख्यात द्वीप समुद्र है उसके नीचे ये निरंतरों के भवन आदि पाए जाते हैं। अब लास्ट करेगा आपको ऐसा लगेगा हम जंप कर रहे हैं, क्योंकि ये भवनों की बात मैं गौण करके अभी नरकों की बात बताऊंगी आपको, क्योंकि ये सारा विषय दोबारा आने वाला है भवनों का। अभी तक हमने क्या देखा, पृथ्वियां है एक के नीचे, अधोलोक में सात पृथ्वियां है, उसमें से पहली पृथ्वी की जो मोटाई है उसके तीन भाग देखे, ऊपर का खर भाग उसमें 16 लेयर्स है, बीच का पंख भाग और नीचे का अबबहुल भाग, बराबर। ऊपर के दो भागों में ग्रंथरों के और भवनवासियों के भवन है, नीचे के तीसरे भाग में क्या है हम देखेंगे। पहली पृथ्वी के नीचे का भाग, लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 30 पर, पहली पृथ्वी के नीचे का भाग जिसका नाम है अबबहुल भाग, जो 80,000 योजन का है, उसमें पहले नरक के पटल पाए जाते हैं। पटल यानी लेयर्स, अलग अलग लेयर्स पर। जब हम कहेंगे पहला पटल तो ऊपर का है वो पहला, ऊपर से नीचे की ओर हम गिनेंगे, पहला दूसरा तीसरा ऐसे पटल कहलाएंगे। पटल अर्थात प्रस्तर यानी लेयर्स, जैसे हमारी मंजिलें होती है, परंतु नरकों के पटलों की गिनती ऊपर से नीचे की ओर करते। जब हम स्वर्गों की बात देखेंगे तो नीचे पहला स्वर्ग, नीचे फिर दूसरा तीसरा ऊपर बताएंगे। जब हम नरकों को कहेंगे पहला दूसरा तो ऊपर से नीचे चले जाएंगे। तो इनमें नरकों के बिल पाए जाते हैं। तो पृथ्वियों के अंदर भवनवासियों के भवन और नरकों के बिल पाए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो दोनों ही पृथ्वी के अंदर है, यानी जमीन के अंदर जो कैविटीज है उनकी, परंतु जैसे चूहे का बिल होता है, परंतु वो जमीन के ऊपर से अंदर उसने रास्ता किया है बिल तक, परंतु ये जो भवन है और ये जो नरकों के बिल है उसको बाहर कोई कनेक्शन नहीं है, ये डिफरेंस है उसमें, यानी उसके कोई सीढ़ियां नहीं, खिड़कियां नहीं है, या उसके ऊपर से ऐसा दूर से ऊपर तक आ सके ऐसा कुछ उसमें नहीं है, बस वो सब कैविटीज अंदर से बंद है। अब तीसरा पैराग्राफ, इस नहीं नहीं अभी इसमें जो पहली पृथ्वी है ना उसमें मात्र पहला नरक है, और उस पहले नरक के 13 अलग अलग लेयर्स है, इसको पटल कहते हैं। पहले नरक के 13 पटल है, एक आपके पास जो चार्ट है ना उसे निकालना है ना। हाँ मैं बता देती हूँ, चार्ट नंबर 1, तब तक आपके पुस्तक में निकालो। हाँ आपके पुस्तक में देख सकते आप, एक नंबर के चार्ट में आप देखना, जहाँ रत्न प्रभा आदि नाम लिखे ना एक के नीचे, वहाँ बाजू में उसके 13 पटल लिखा है। हाँ देखो, यहाँ तो दूर से आपको शायद वो दिखाई नहीं देंगे। हाँ बुक में आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, बुक में अच्छा दिख रहा है। जहाँ रत्न प्रभा ब्रैकेट में धर्मा लिखा है उसके आगे 13 पटल लिखा है। ये जो हमने देखा अभी ये 80,000 योजन है। कोई भी पृथ्वी में जब नरक की चर्चा आएगी तो ये पृथ्वी की जो मोटाई है इतनी मोटाई है, तो नीचे 1000 योजन और ऊपर 1000 योजन छोड़कर बीच में जो उस एरिया है उसमें ये बिल पाए जाते हैं। उसमें भी पहला लेयर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऊपर से नीचे तक उसके लेयर्स हो गए। तो पहली पृथ्वी में एक के नीचे एक ऐसे 13 पटल पाए जाते हैं। उसी चार्ट में देख लो आप, फिर ये अब बहुल भाग में पहला नरक है बस। दूसरा नरक कहाँ है, तो दूसरी पृथ्वी में है, वहाँ भी देख लो कितने पटल है। देखो वहाँ तो 11 पटल है। तीसरी पृथ्वी में तीसरा नरक है, वो तीसरे नरक के ही है, 9 पटल है। हाँ, दो दो कम हो रहे। चौथी में 7 पटल है, पांचवी में 5 पटल है, छठी में 3 पटल है, सातवीं का एक ही लेयर है, एक ही लेयर पर वो 5 उसके बिल है। तो ये कौन से नरक में कितने पटल है और टोटल बिलों की संख्या कितनी है वो यहाँ बताएगा, और उसकी गिनती कैसे करना उसका भी बताएंगे कैसे, यानी किसको क्या कहना, बस इतनी यहाँ मुख्यता है। तो हमने क्या देखा, ये जो पहले नरक में देखो 31 पेज पर तीसरा पैराग्राफ, इस 80,000 योजन वाले अब बहुल भाग में पहला नरक है जिसके अनेक पटल यानी पाथड़े हैं। पटल कहो पाथड़े कहो एक ही बात है, प्रस्तर भी कहते हैं। एक के नीचे एक ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा आदि पटल है और एक एक पटल में लाखों बिल होते हैं। इसमें भी संख्यात योजनों के और असंख्यात योजनों के भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, क्योंकि ये सब मिलकर तो असंख्यात नार की। तो पहले नरक में देखो सातवें नरक में तो बिल मिनिमम है, फिर भी वहाँ नार की असंख्यात है सातवें नरक में, उससे असंख्यात गुने छठे में, उससे असंख्यात गुने पांचवे में, उससे चौथे, तीसरे, दूसरे में, दूसरे से सातवें नरक तक के सभी नारकियों की टोटल करेंगे उससे असंख्यात गुना नार की पहले नरक में है। और ऐसा मत समझना हम शास्त्र साध्य करते हैं सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, सातवें नरक में भी असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि है और वहाँ कोई सम्यक्त्व के साथ जा नहीं सकता, वहाँ मिथ्यात्व के साथ। दूसरे से सातवें नरक तक जाने वाले जीव नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जाते हैं, परंतु वहाँ जाने पर ऐसी वेदना और ऐसी प्रतिकूलता है तो जीव सोचता है कि ऐसा मैंने क्या किया। तो कोई जिसको पूर्व भव में कोई देशना मिली है तो उसको सोचता है, वो याद आते अरे मैंने अपना कुछ यानी पाप ही पाप करता रहा और इसके फलस्वरूप यहाँ आ गया। तो ये तीव्र वेदना के काल में भी वो स्वरूप का चिंतन करता है, वहाँ जाके समय दर्शन प्राप्त करता है। असंख्यात जीव वहाँ समय दृष्टि है, हमें आती है। तो हमें तो ऐसा लगता है हमने समय दर्शन प्राप्त किया तो क्या बड़ा किया, जब पूरे विश्व व्यवस्था देखेंगे कहाँ कितने जीव और कहाँ कौन सी परिस्थिति में भी समय तो प्राप्त कर सकते हैं। तो हम तो यहाँ पहले में पहले क्या सुधारना चाहते हैं, संयोगों। अभी तो बहुत प्रतिकूलता है, जरा संयोग सुधार लेंगे, क्यों बेन शिला बेन बहु आ जाएगी फिर हम साध्य में आ जाएंगे। देखो 80,000 योजन मोटाई में ऊपर का 1000 योजन छोड़ देना और नीचे का भी 1000 योजन छोड़ देना, इसके बीच में पहले नरक के 13 पटल है। यह मात्र पहले नरक की बात है, 2 पटलों के बीच में भूमि है, क्योंकि ये पूरी भूमि है ना, पूरी सॉलिड है और उसी के अंदर जो कैविटीज है, जैसे मृदंग है तबला जो बजाते ना, तो वो जमीन के अंदर गाड़ दिया तो वो अंदर से हॉलो है ना, तो उसकी कैविटी कैसी होगी कि बाजू में तो पूरी सॉलिड जमीन है और बीच में वो कैविटी है, वैसे ये नरक के बिल है कि बीच में वो कैविटीज है और उसके अंदर क्या क्या होता है वो देखेंगे हम। तो बाजू में तो सब सॉलिड जमीन है, तो कहते 2 पटलों के बीच में भूमि है। वैसे तो एक एक नरक बिल संख्यात असंख्यात योजनों के होते हैं, इन 13 पटलों में 30 लाख बिल पाए जाते हैं, 13 में मिलकर 30 लाख। पहले नरक में कुल 30 लाख बिल है, वहाँ जीवों की संख्या भी सबसे ज्यादा है, जो भी मैंने अभी बताई थी यही बात बताई, यहाँ असंख्यात गुना असंख्यात गुना। और वो समय दृष्टियों की भी बात हमने आगे देखी थी। देखो लास्ट लाइन में यही बात लिखी है, लास्ट दो लाइन, हम तो पहले संयोगों को ठीक करने में जुड़ जाते हैं, स्वाध्याय करने की बात आती है तो कहते हैं हम भी आप जैसे बूढ़े हो जाएंगे तो स्वाध्याय करेंगे। अभी तो हमारे कमा के दिन हैं, कमाने के दिन हैं, बाद में जरूर फुर्सत से स्वाध्याय करेंगे। मैंने ये बात पहले यहाँ पर बताई होगी शायद कि मुझे आज तक ऐसा कोई भी नौजवान नहीं मिला मेरी जैसा कि कहते हैं कि आज अभी तो हम स्वाध्याय करेंगे, कमाएंगे और फिर क्या बुढ़ापे में जाके शादी करूंगा। ऐसा कुछ कोई नहीं मिलता। हाँ वो नहीं बोले, मुझे मालूम है। तो हम क्या है, कमाई भी चलती रहती है, शादी भी करते हैं, बच्चे भी होते हैं, सब कुछ साथ साथ चलता रहता है। हम तो स्वाध्याय की बात आती है तो क्या कहते हैं, फिर बहाना बनाना है ना उसको, इसलिए। हाँ तो ये बिल कैसे उसको हम देखेंगे, देखो इसके लिए 13 नंबर का चार्ट जो आपने अभी लगाया था आपके पास भी है, उसको जरा देख लेते हैं। हाँ अभी है 5 मिनट, कोई बात नहीं, आपके पास चार्ट है ना, आप उसी में देख लो, आपके चार्ट में देख लो 13 नंबर का। देखो ये जब नरकों की या स्वर्गों की बात आएगी, नरकों में तो हम बिल कहेंगे और जो विमानों की बात है तो उसको हम विमान कहेंगे, देवों के जो रहने के ठिकाने हैं उनको विमान कहते हैं और नरकों में जो है वो उसको बिल कहेंगे। तो उसमें सबसे सेंटर वाला जो है, अभी हम बिलों की बात करेंगे, हम अभी विमानों की बात नहीं करेंगे, सबसे सेंटर का जो है प्रत्येक पटल में सेंटर में एक एक बिल है, उसका नाम है इंद्रक बिल। ये लगा है क्या आपने? हाँ बहुत अच्छा। देखो ये सेंटर में ये जो ब्लू दिखता है ना आपको गोल, तो ये है सेंटर वाला, इसको क्या कहेंगे, इंद्रक। अभी यहाँ जो सीमन तक लिखा है वो उस इंद्रक का नाम है, पहले नरक के सीमन, पहले पटल का जो सेंटर का जो बिल है उसका नाम है, इसका नाम ही सीमन तक इंद्रक है, परंतु इंद्रक कहने से वो सेंटर का बिल है उसको इंद्रक कहते हैं। श्रेणीबद्ध किसको कहते हैं, ये जो सिंगल लाइन है पूर्व में है, ये दक्षिण में है, ये पश्चिम में है, ये उत्तर में है, इसको कहते हैं दिशा वाले श्रेणीबद्ध। और ये जो आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य, ये समझते हैं ना क्या, नहीं समझते, आग्नेय समझते हैं। हाँ तो ये क्या है, इसको कहते हैं विदिश। हाँ नहीं नहीं, ये साउथ ईस्ट क्यों गए, आग्नेय ने साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट, आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य। तो ये दिशा वाले श्रेणीबद्ध और ये सब है वो विदिशा वाले श्रेणीबद्ध। विदिशा समझते, उपदिशा कहो या विदि, इन बिटवीन, एक तो मेन दिशा है ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये ऊपर, ये उत्तर, ये बीच में इंद्रक है। तो ये जो पहले नरक का पहला पटल ऊपर का सबसे, तो उसमें सेंटर में एक है और श्रेणीबद्ध विमान जो, देखो ये लिखा है यहाँ सीमन तक इंद्रक, इसका नाम है सीमन तक, वो 45 लाख योजन विस्तार वाला है। आपको 45 लाख योजन वाला और कुछ मालूम है? हाँ सिद्ध शिला, और दूसरा ढाई द्वीप मनुष्य लोक, वो भी 45 लाख योजन का है। ये इंद्रक बिल जो पहले नरक का पहला जो बीच वाला इंद्रक बिल है वो 45 लाख योजन का है। वैसे स्वर्गों में भी देखेंगे, सौधर्म ईशान स्वर्गों की बात करेंगे तो भी सेंटर वाला इंद्रक विमान कहलाएगा और वो भी 45 लाख योजन का है। देखो अपने यहाँ आपने 12 अंग वगैरह नाम सुना होगा, तो उसमें एक अंग ऐसा है जिसका नाम है समवायांग। तो उसमें क्या बातें होती, ये समान समान चीजें वहाँ बताई जाती, 45 लाख वाली क्या क्या है उसको बताएंगे, 1-1 लाख योजन वाला क्या क्या है उसको बताएंगे, ये सब क्षेत्रों की समानता, भावों की समानता और भी जो कालों की समानता, ये जो समान समान बातें उसमें बताई जाती है, उस अंग का नाम ही समवायांग है। अब हम तो यहाँ देख रहे हैं, समय हो गया ना। देखो ये सेंट्रल वाला जो है वो इंद्र कहता है, ये बाकी श्रेणीबद्ध है। ये कैसे है, असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। जो पहले नरक का पहला पटल है उसमें यहाँ 49 टोटल श्रेणीबद्ध भी है, यहाँ 49, यहाँ 49, यहाँ 49 और यहाँ 49। परंतु ये बिल है, यहाँ 48 48 ही हो जाते हैं और बाकी इन बिटवीन एट रैंडम जो है ना उसको कहेंगे प्रकीर्णक। कौन से तीन देखे, सेंटर वाला एक इंद्रक होता है, हर पटल में सेंटर में एक इंद्रक बिल है। ऊपर के पटल में ऐसे 49 49 हर दिशा में है और बाकी जो एट रैंडम है वेरियस साइज वाले, कोई चौकोर है, कोई गोल है, कोई त्रिकोण है, तो ये सारे जो है उसको प्रकीर्णक कहते हैं। ये क्या है, ये 45 लाख योजन वाला है। श्रेणीबद्ध जो है असंख्यात योजन विस्तार वाले है, दिशाओं में 49 हुए और विदिशाओं में 48 है हर विदिशा में। तो ये 49 × 4 यहाँ हो गए और 48 × 4 यहाँ हो गए। तो यहाँ देखो प्रथम नरक के 13 पटलों के बिल कितने हैं, 30 लाख। कैसे मिले, हर एक का अपना अपना एक इंद्रक, तो 13 हुए। अब ये जो 49 हुए ना यहाँ पर, ये 49 वगैरह, उसमें हर पटल में एक एक कम होता चला जाएगा। दूसरे पटल में 48 हो जाएंगे, तीसरे पटल में 47 हो जाएंगे, चौथे पटल में 46 हो जाएंगे। इस तरह से 13 पटलों में सभी श्रेणीबद्धों की टोटल संख्या 4420 4420। अभी इसके भी गणित है और बहुत शॉर्ट में आप इसका निकाल सकते हैं, अभी इसमें नहीं जाएंगे हम। और बाकी बचे हुए 30 लाख में से इसको छोड़ दो तो ये बाकी जो है 29,95,567, ये सब मिलकर 30 लाख कुल बिल ये पहले नरक के 13 ही पटलों में मिलकर है। देखो ये 33 पेज पर नीचे से वो दूसरा पैराग्राफ। अब श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलों में क्या होता है इसे देखते हैं। पहले नरक के पहले पटल में चारों दिशाओं में 49 49 49 49 श्रेणीबद्ध बिल होते हैं तथा विदिशाओं में एक एक कम अर्थात 48 48 48 48 श्रेणीबद्ध बिल होते हैं। पहले नरक के दूसरे पटल में मध्य में एक इंद्रक बिल, अब दिशाओं में एक एक कम होता है यानी वो दिशाओं में भी 48 48 हो जाएंगे और विदिशाओं में 47 47 हो जाएंगे। ऐसे ही हर पटल में एक एक श्रेणीबद्ध कम होता चला जाएगा, दिशा वाला भी और विदिशा वाला भी। ये हमने पटलों की संख्या देखी थी, पहले नरक में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 9, इस तरह से सातवें तक एक पटल तक आ जाते हैं। तो टोटल पटलों की संख्या भी देखा, कुल पटलों की संख्या 49 है और प्रत्येक पटल में एक एक कम हुआ, तो कितनी बार कम हुआ, 48 बार कम हुआ है ना। पहले से दूसरे में एक कम हुआ, पहले तो फिक्स रखा तो 48 बार कम हुआ, तो प्रारंभ में 49 49 थे और वो घटते 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 48 बार घटने पर एक एक श्रेणीबद्ध रहा। तो इस तरह से घटते घटते सातवें नरक में सेंटर में इंद्रक एक रहा और ये 49 थे वो घटकर यहाँ एक रह गया, पूर्व में एक, पश्चिम में एक, दक्षिण में एक, उत्तर में, तो टोटल 5 ही बिल रहेंगे सातवें नरक में। समझे ना, पटल पटल प्रति एक एक घटते घटते यहाँ इतने रह गए। तो उसके कैसे निकालना, क्या उसके सूत्र है, हमें उसमें अभी नहीं जाएंगे। जिसको गणित प्रिय लगता है ना नील, वो त्रिलोक साल में पढ़ना आप जरूर, और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है। हम गणित का नाम लेकर दूर से ही भागते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो ये और भी इसकी विशेषता हम कल देखेंगे, अभी तो हम यही रुकेंगे, अपना समय हो गया है। बोलो 2400 भगवान।